समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगले 30 मिनट तक इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सरबजीत कौर। गुड मॉर्निंग सरबजीत।
गुड मॉर्निंग विशाल एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर ऑसम लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड लिसनर्स, एज विशाल जस्ट ब्रीफ्ड ऑल ऑफ अस दैट द नेक्स्ट 30 मिनट्स आर गोइंग टू बी पैक्ड विद news, information, entertainment and of course music. And Vishal, today is also a very special day.
Ji,
today is the International Human Solidarity Day.
Ji, antarashtriya manav ekta divas har saal 20 december ko manaya jata hai. Kya hai ye antarashtriya manav ekta divas aur kya hai iske piche banane ka karan, is par bhi baat karenge karyakram mein aage. Sabse pehle nazar dal lete hain mukhya samacharon par.
Ji,
दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हटा दी है, शेष सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में लगाई गई हैं। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी के साथ कल संसद भवन थाने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन पर संसद भवन परिसर में भाजपा सांसदों को धक्का देकर चोट पहुंचाने के आरोप में धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 लगाई गई हैं।
एंड टेकिंग दिस न्यूज स्टोरी अ लिटिल फर्दर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज इश्यूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दैट नो पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ग्रुप ऑफ एमपीज विल होल्ड एनी धरना एंड डेमोन्स्ट्रेशन एट एनी बिल्डिंग गेट्स ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। द इंस्ट्रक्शन हैज कम इन द वीक ऑफ द इंसिडेंट इन द पार्लियामेंट प्रेसेंस यस्टरडे एज कांग्रेस एंड बीजेपी एमपीज शव्ड ईच अदर एट द गेट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट्स व्हिच लेड टू इंजरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ टू एमपीज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माई जीओवी पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों और माता पिताओं के लिए विविध विकल्प प्रश्न में क्विज प्रतियोगिता तैयार की गई है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा करा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा के तनाव, करियर और जीवन में भावी आकांक्षाओं के बारे में होने चाहिए।
In fact, Vishal, we encourage our listeners to participate in great numbers in this wonderful program, Pariksha Pe Charcha. Moving on further in the news, Foreign Secretary Vikram Misri will be on a 3-day official visit to Mauritius beginning today. The visit marks the first high-level bilateral engagement between India and Mauritius after the formation of the new government in Mauritius led by Prime Minister Naveen Chandra Ram Gulam. The visit is a continuation of the regular high-level exchanges between the two countries and reflects the priority India attaches to its relations with Mauritius under its Vision Sagar, Africa Forward policy and commitment to Global South. India and Mauritius share age-old ties rooted in shared history, culture and tradition and encompasses cooperation across several sectors. The visit will be an opportunity to further advance India's bilateral ties with Mauritius.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में समझौते के लिए तैयार हैं। संवाददाताओं से बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है और वे राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की सहित किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते पर वर्तमान में रूस द्वारा मान्य यूक्रेनी संसद के वैध प्राधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन ने इन दावों को खारिज कर दिया कि रूस कमजोर स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की स्थिति अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने यूक्रेन के साथ अस्थायी शांति समझौते का विचार खारिज करते हुए कहा कि केवल स्थायी शांति समझौता ही स्वीकार्य होगा।
The Delhi government has announced a complete ban on all types of firecrackers in the national capital throughout the year, starting from January 1st, 2025. And Vishal, of course, this is in view of the, you know, deteriorating air quality in NCR. In fact, it's in, you know, it's been in dangerous levels for quite some time now. According to a government order issued in this regard, the sale, storage and use of firecrackers will be completely banned. During a hearing in Supreme Court yesterday, Delhi government informed the apex court about the complete ban on firecrackers amid the increasing air pollution in the city. The Delhi government's order states that under Section 5 of the Environment Protection Act 1986, instructions have been given to impose a permanent ban on the firecrackers in the national capital. And now, some news from the world of sports. New Delhi is set to host the 2025 World Para Athletics Championships at Jawaharlal Nehru Stadium next year. It will be the first time the event will be held in India, the World Para Athletics announced yesterday. The event is set to take place from September 26 to October the 5th. New Delhi will be the 12th. In fact, this edition will be the 12th edition of the championships. And this is the fourth time it is being hosted in Asia, following Doha in 2015, Dubai in 2019 and Kobe in 2024. In addition, the Indian capital will also host a World Para Athletics Grand Prix for the first time next year. It is scheduled to take place from March 11 to 13th at the Jawaharlal Nehru Stadium.
नवी मुंबई में कल रात महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज को 60 रन से हरा दिया और श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए, जो अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। स्मृति मंधाना ने 77 और ऋचा घोष ने 54 रन का योगदान किया। ऋचा घोष ने केवल 18 गेंद में 50 रन बनाकर महिला टी20 में सबसे तेज अर्धशतक बनाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 9 विकेट पर 157 रन पर ही सिमट गई। राधा यादव ने 4 विकेट लिए। ऋचा घोष को प्लेयर ऑफ द मैच और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और अब खबरें प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई, इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी हम खबरें आपको देते हैं। तो सरबजीत, सबसे पहले किस महानगर की खबरें आप दे रहे हैं?
जी विशाल, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सदर्न जोन इन चेन्नई डायरेक्टेड द केरला गवर्नमेंट टू रीइंबर्स तमिलनाडु फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन क्लियरली इलीगली डंपिंग बायोमेडिकल वेस्ट, होल्डिंग केरलाज लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिपार्टमेंट अकाउंटेबल। The tribunal responded to Tamil Nadu's plea for recovering clean-up costs during the hearing on Wednesday. The National Green Tribunal criticized Kerala for its failure to prevent biomedical waste dumping in Tamil Nadu's border villages and Tirunelveli. It also questioned the state's approval of new hospitals without adequate waste treatment facilities. And Vishal, would you like to share the news from Delhi with our listeners
जी,
now?
सरबजीत, दिल्ली की खबरों की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबर है। दिल्ली के निजी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा एक के में प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। 28 नवंबर को शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। अभिभावक ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी स्कूल 3 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली सूची 17 जनवरी को जारी की जाएगी। दिल्ली से एक और खबर है। कैम्ब्रिज के मेयर सीएलआर बैजू थिट्टाला ने दिल्ली के डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्कूल का कल दौरा किया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर श्री भारद्वाज ने कहा कि इस दौरे से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया है। मेयर ने स्कूल में अपनाए जा रहे शिक्षण के तरीकों को भी देखा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण कालिंदी कुंज जंक्शन पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य समेत आगरा कैनाल सड़क पर एक पुल बनने का काम अगले कुछ महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए व्यस्त समय के दौरान कालिंदी कुंज जंक्शन के आसपास के क्षेत्र से नहीं गुजरने की सलाह दी है।
Yes, Vishal, that was indeed a very important piece of information for, you know, residents of Delhi. Moving on to a buzz from Bengaluru, Karnataka's air connectivity is set to improve as Air India Express announced a 25% increase in operations from the state this winter, including two new direct routes from Bengaluru. Weekly flights from Karnataka have increased from 380 last year to over 475 this season. Starting December 27th, Bengaluru will connect to Amritsar with four weekly flights and to Dammam with three weekly flights from January 1st next year. The airline has also introduced flights on the Bengaluru-Indore and Bengaluru-Port Blair routes, increased Bengaluru-Abu Dhabi flights to Delhi, and will launch Bengaluru-Patna services on January 15, 2025. Operations at Mangaluru Airport have also expanded with direct connections to Singapore, Bengaluru, Delhi, Mumbai, Pune and eight Middle Eastern destinations. The Bengaluru Metropolitan Transport Corporation, BMTC, is set to expand its fleet with 148 additional electric buses under the Gross Cost Contract, GCC, model with Tata Motors. As part of the agreement, Tata Motors will supply, operate and maintain 12-meter low-floor Tata Starbus electric buses for BMTC over a 12-year period. This order builds on a previous order for 921 electric buses, mostly of which are already operational with an uptime of over 95% according to Tata Motors. And Vishal, which is the next metro city that you're going to take up?
सरबजीत, अब मुंबई की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय सीट से शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर की जीत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने 48 वोटों के मामूली अंतर से श्री वायकर की जीत को चुनौती दी थी और उनका चुनाव निरस्त करने का अनुरोध किया था. श्री कीर्तिकर ने दावा किया कि उन्होंने मतगणना के दिन ही वोटों की गिनती में विसंगति का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती कराने का अनुरोध किया था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप मारने ने कीर्तिकर की याचिका खारिज कर दी. और एक और खबर रेल यात्रियों के लिए है. मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुंबई और नागपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. साप्ताहिक विशेष ट्रेन संख्या 02139 कल लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से रात्रि 12:55 पर रवाना होगी. एक अन्य साप्ताहिक विशेष ट्रेन संख्या 02140 कल रात्रि 10 बजे नागपुर से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:45 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी. ये रेलगाड़ी ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा में रुकेगी.
एंड विशाल, आई हैव नाउ अ वेरी इंस्पायरिंग पीस ऑफ न्यूज फ्रॉम हैदराबाद. द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM सिकंदराबाद विल बी अवार्डेड विद द प्रेसिडेंट्स कलर्स टुडे. President Draupadi Murmu will be doing the honours this morning at a ceremonial event to be held at the CDM. Established in the year 1970, the CDM has evolved from its initial focus on administrative training to an institute of highest order that imparts training to tri-services officers in strategic planning, resource management and leadership. CDM Commandant Major General Harsh Chibber informed that the CDM programs, including the higher and senior defense management courses, attract military personnel from the country and also across the world. The 37th Hyderabad Book Fair has been opened for the public last evening at the Telangana Kala Bharati campus of the NTR Stadium in Hyderabad, with Chief Minister A. Revanth Reddy inaugurating the event. Mr. Reddy said the digital generation relies too much on online services while history and true accounts remain buried in the pages of books. He highlighted how literature fueled the Telangana statehood movement and urged a renewed appreciation for authors who shaped the region's narrative. The inaugural ceremony was attended by ministers, prominent writers and cultural figures. The fair presents both new and second-hand volumes spanning a diverse range for the city's reading community, from freshly printed fiction and works by historians like Ramachandra Guha to rare collectibles. Visitors are treated to a treasure trove of literary finds. The publication division of the Ministry of Information and Broadcasting opened its stall at the exhibition and kept over 1,000 titles on the display. Women's literary contributions took center stage at the Akshayan stall, which displayed works by over 1,500 female Telugu authors. Religious and philosophical diversity were evident with stalls by publications like Minhaj, Dayanand and Ramakrishna Math offering theological and analytical texts, including works of Swami Vivekanand. The exhibition is open till 29th of this month. And Vishal, what's the news from Kolkata today?
सरबजीत, क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं पूरी दुनिया में और देश में भी और नजदीक ही है क्रिसमस का त्यौहार अब
बिल्कुल।
और पश्चिम बंगाल में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल शाम कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एलन पार्क में क्रिसमस उत्सव की शुरूआत की। पार्क स्ट्रीट और आसपास के इलाकों को खूबसूरती से सजाया गया है। सेंट पॉल कैथेड्रल को रोशनी से सजाया गया है। बो बैरक इलाके में भी सजावट की गई है। तो ये तो थे अब तक के मेट्रो समाचार। बात अब मौसम की कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस आज दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 19 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज। वाइल हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर्स विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 16 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस। And Vishal, I think time now to move to the most interesting segment of our news magazine program, Aaj Savere, wherein we shall talk about, you know, the historical importance of today's day, that is...
कार्यक्रम की शुरुआत में सरबजीत हमने अपने श्रोताओं को एक हल्का सा एक उल्लेख किया था, जिक्र किया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है
जी।
और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की हम बात करें तो हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है। ये दिवस शांति, सामाजिक न्याय और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है।
यस विशाल, सो राइटली सेड बाय यू। एंड यू नो द मेन गोल ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडैरिटी डे, ऑल्सो नोन एज IHSD, इज टू रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ सॉलिडैरिटी by making member states aware of global objectives and initiatives to reduce poverty and to formulate and share poverty reduction strategies of independent nations around the world. In fact, this effort, Vishal, is not only limited to the government level, but, you know, at the micro level also, as individual per se, we can contribute a lot by, you know, maybe this is just an idea that by contributing to education or by, you know, doing something very constructive for differently abled people in the society.
जी सरबजीत, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये केवल सरकारों की ही तो जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम इसमें अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर दे सकते हैं। आपने गरीबी उन्मूलन की बात करी और शिक्षा की भी बात की। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास, मानवाधिकार और शांति को बढ़ावा देने के लिए विश्व के देशों और लोगों को एक साथ लाना है।
एब्सोल्युटली, एंड वेयर यू नो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ मोर इंक्लूसिव, a more tolerant, a society which accepts, all kinds of people with special and different abilities too. And, coming to the history of this day, Vishal, the International Human Solidarity Day was established under the UN Millennium Declaration that determines the civil and political rights of an individual in the modern era by establishing foreign relations between the member states and the UN. And it was introduced by the General Assembly during the 2005 World Summit and formally established on December 22, 2005 by Resolution Number 60/209, which recognized solidarity as a fundamental and universal value.
जी, और अब हम बात करेंगे इतिहास की और इतिहास में आज के दिन घटी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की प्रमुख घटनाओं का अगर हम बात करें तो 1955 में आज ही के दिन भारतीय गोल्फ यूनियन की स्थापना हुई थी।
1830, 20 दिसंबर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बेल्जियम एज एन इंडिपेंडेंट नेशन।
1959 में आज ही के दिन भारत के जस्सू पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट लिए थे। पटेल का ये रिकॉर्ड लंबे समय तक बरकरार रहा। 1983 में कपिल देव ने एक इनिंग में 9 विकेट लेकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी की। 40 साल बाद फरवरी 1999 में अनिल कुंबले ने एक इनिंग में सभी 10 विकेट लेकर जस्सू पटेल का रिकॉर्ड तोड़ा। कुंबले एक इनिंग के सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी थे। उनसे पहले जुलाई 1956 में इंग्लैंड के जिम लेकर एक इनिंग में 10 विकेट हासिल कर चुके थे।
And Vishal, such are the calls for the nation on December 20th, 1957, while spending Christmas holidays at Graceland, rock and roll singer Elvis Presley received his draft notice to join the United States Army for national service. And in 1960, on this day, the Vietnamese National Liberation Front was formed with the purpose of effecting the reunification of North and South Vietnam.
और 1988 में आज ही के दिन यानी कि 20 दिसंबर 1988 की हम उल्लेख कर रहे हैं, वोटिंग की उम्र, मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का बिल विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून बन गया।
यस विशाल, दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। 1963, 20 December, more than 2 years after the Berlin Wall was constructed by East Germany to prevent its citizens from fleeing its communist regime, nearly 4,000 West Berliners were allowed to cross into East Berlin to visit relatives. Jee. Under an agreement reached between East and West Berlin, more than 1,70,000 passes were eventually issued to West Berlin citizens, each pass allowing a one-day visit to communist East Berlin.
और इस दीवार को बनवाने के पीछे जो एक प्रमुख वजह जो रही थी सरबजीत, वो ये रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1954 से 1960 के दौरान पूर्वी जर्मनी के कई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और स्टूडेंट्स पश्चिम जर्मनी चले गए थे, और पूर्वी जर्मनी ने इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए ही 1961 में ये बर्लिन की दीवार बनवाई थी। और ये दीवार 255 किलोमीटर लंबी दीवार थी।
बिल्कुल। एंड ऑन दिस डे year 1999, 12 years after an agreement was reached between China and Portugal, several centuries of Portuguese rule ended in Macau when it became a special administrative region under the Chinese sovereignty. And Vishal, do you have any more information in this segment on your list?
सरबजीत, अब इस सेगमेंट में हमारे पास कोई और फर्दर जानकारी नहीं है, और अब हम बात करेंगे उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम मेरे सामने है नलिनी जयवंत का, आज इनकी पुण्यतिथि है। भारतीय सिनेमा की बहुत जानी मानी और सुंदर अभिनेत्रियों में से एक थी। इन्होंने 50 और 60 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। फिल्म काला पानी का एक गीत था कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, इस गीत पर नलिनी जयवंत के अभिनय को आज कौन भुला सकता है। नलिनी जयवंत ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत वर्ष 1941 में प्रदर्शित फिल्म राधिका से की थी। दिलीप कुमार, देवानंद और अशोक कुमार के साथ नलिनी जयवंत ने कई सफल फिल्में दी थी, और फिल्म आंख मिचोली भी इनकी बहुत ही सफल फिल्म रही, और इसकी सफलता ने इनको आसमान पर पहुंचा दिया। 1950 के दशक में नलिनी जयवंत ने अशोक कुमार के साथ फिल्म समाधि और संग्राम से नई ऊंचाई हासिल की।
गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरी गोरी,
ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं ये फिल्म समाधि का गीत है, और ये गीत आज तक याद किया जाता है।
ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में सी बात अच्छी नहीं,
फिल्म काला पानी में किशोरी बाई की भूमिका के लिए नलिनी जयवंत को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था।
एंड विशाल, अब आपने माहौल इतना म्यूजिकल बना ही दिया है, तो यू नो लेट्स पे आवर ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट पेत्रो रायमोंडी। टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी, एन इटालियन कंपोजर ट्रेडिशनल बिटवीन यू नो द क्लासिकल एंड रोमांटिक एरियाज। व्हाइल पेत्रो रायमोंडी वॉज फेमस एट द टाइम एज अ कंपोजर ऑफ ऑपराज एंड सेक्रेड म्यूजिक, He was also an innovator in, you know, few musical techniques, and we have this rendition for you.
आज के दिन जन्म हुआ था रॉबिन शॉ पुष्प का, और मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। मशहूर कथा, उपन्यास, नाटक और पटकथा लेखक थे ये, और आजीवन स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया। रॉबिन शॉ पुष्प की 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें उपन्यास, कहानियां, कविताएं, लेख, नाटक और बाल साहित्य भी शामिल है। अन्याय को क्षमा, दुल्हन बाजार जैसे उपन्यास, अग्निकुंड, घर कहां भाग गया कहानी संग्रह और फणीश्वरनाथ रेणु पर लिखी संस्मरण पुस्तक सोने की कलम वाला हीरामन उनकी चर्चित कृतियां रहीं। रॉबिन शॉ की पहली कहानी धर्मयुग में छपी थी। रेडियो और टीवी के लिए भी इन्होंने कई नाटक और कहानियां लिखीं। इनकी कहानियों पर बनी टीवी फिल्में रांची, मुजफ्फरपुर, रायपुर और दिल्ली दूरदर्शन पर कई बार प्रसारित हो चुकी हैं। पटना से प्रकाशित फिल्म पत्रिका चित्र साधना और महादेश से भी ये लंबे समय तक जुड़े रहे। इनकी कहानियां उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी और मैथिली में भी अनुदित हुई। रेडियो पर प्रसारित इनका लिखा नाटक दर्द का सुख आज भी लोकप्रिय है। और इनके सम्मान की अगर हम बात करें तो 1976 में हिंदी सेवा तथा श्रेष्ठ साहित्यिक सृजन के लिए इनको सारस्वत सम्मान दिया गया, और 1994 में हिंदी कथा साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको राजभाषा विभाग बिहार सरकार द्वारा फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
विशाल, वी आर ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू M.Y. Krishnamurti. Today is her birth anniversary, an Indian classical dancer recognized for her contributions to Bharatnatyam and Kuchipudi dance. She was a recipient of the Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Sangeet Natak Academy Award. Krishnamurti was born on 20 December 1940 in the present-day Chittoor district of the Indian state of Andhra Pradesh, and her father was a Sanskrit scholar. She began her dance training at the tender and early age of 5.
और सुनील कोठारी प्रसिद्ध भारतीय नृत्य इतिहासकार, विद्वान और आलोचक थे। आज के दिन इनका जन्म हुआ था 1933 में। भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने से पहले सुनील कोठारी, बहुत आश्चर्य की बात है सरबजीत जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पेशे से, लेकिन नृत्य में और भारतीय नृत्य कलाओं में इनकी इतनी रुचि थी कि इस पर इन्होंने इतना काम किया और इनके काम को पूरी दुनिया में सराहा गया है। इन्होंने भरतनाट्यम, ओडिसी, छऊ, कथक समेत अन्य भारतीय नृत्य कलाओं पर 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सुनील कोठारी ने नृत्यों के उद्गम और उनकी पूरी यात्रा को समझने के लिए देश के कई भीतरी और दूरदराज के हिस्सों में भी यात्राएं की। इन्होंने भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी लोक नृत्यों पर खूब लिखा।
एंड लिसनर्स, वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर वकूम मजीद, बॉर्न ऑन 20 दिसंबर 1909 इन ट्रावनकोर। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मजीद वॉज अट्रैक्टेड टू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, एंड वेन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्ज इन केरला, मजीद वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ इट्स लीडरशिप। And listeners, today is the birthday of Stephen William Bragg, an English singer, songwriter, musician and author. We have this rocking number for you.
The song is New England and the singer is a very wonderful Billy Bragg.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be...
And listeners, time, Vishal, for us to say goodbye.
समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, तो एक नई मुलाकात के वायदे के साथ अनुमति दीजिए विशाल शर्मा और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की.
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.